डिगो गार्सिया। हिंद महासागर में डिगो गार्सिया को अमेरिकी भूकूट योजना विशेषज्ञ महत्वपूर्ण स्थल मानते हैं। यहाँ पर अमेरिका ने निम्नलिखित सुविधाएं बनाई हैं। एक, पहला, एक जासूसी तथा संचार सुविधा हेतु उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन। दूसरा, 3,660 मीटर लंबा रनवे। तीसरा, एक पोताश्रय जिनमें एक विमानवाही नौसैनिक टुकड़ी को प्रस्थापित किया जा सकता है। चौथा, 3,80,000 बैरल क्षमता वाला ईंधन संचय स्थल जो वायुयानों में काम आएगा। पांचवा, 3,20,000 बैरल क्षमता वाली अन्य ईंधन स्थली जिसका उपयोग जलयान 30 दिन तक लगातार कर सकते हैं। छठा, सामान उतारने तथा लादने हेतु एक 500 फीट लंबी बर्थ। सातवां, तैरने वाले वेयर हाउसेस जिनमें 3 एम्यूनिशन और 7 कार्गो जलयान, 3 वार्सेस तथा 3 आयलर तथा 1 पानी का टैंकर स्थित है जो 12,000 मैरिनों को 30 दिन तक सभी सामान उपलब्ध करा सकते हैं। आठवां, इस रनवे का प्रयोग B-52 बम वर्षक भी कर रहे हैं जो नाभिकीय युद्धाग्र तथा क्रूज मिसाइलों को ढो सकते हैं। अमेरिका की आगामी योजना एक भू-स्थापित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डीप स्पेस सर्विलियंस प्रणाली का विकास करना है। अमेरिका के पास पूरे विश्व में इस तरह की 5 प्रणालियां हैं। यह प्रणाली रडार की तरह कार्य करती है और 1 फुट व्यास वाली वस्तु को 25,000 मील तथा उससे भी अधिक दूरी पर स्थित होने पर भी देख सकती है। यह भी संभव है कि अमेरिका हिंद महासागर को अपनी स्टार वार परियोजना में एक थिएटर सदृश इस्तेमाल करने लगे जिसके चलते हिंद महासागर उपग्रह रोधी तथा बैलिस्टिक मिसाइल रोधी नाभिकीय प्रणाली से पट सकता है। नवंबर 1965 में ब्रिटेन के उपनिवेशों के स्टेट सेक्रेटरी एंथनी ग्रीनवुड ने अपनी सरकार के इस निर्णय का उद्घाटन किया कि हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य की सरकारों द्वारा सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु बीओट, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी नामक एक नया उपनिवेश स्थापित किया जाएगा तथा मॉरिशस तथा सेशल्स की सरकारों को जो उस समय ब्रिटेन के अधीन थे उपयुक्त हर्जाना दे दिया जाएगा। यह कदम ब्रिटेन के अदन तथा सिंगापुर अड्डों से हटने के निर्णय के बाद स्वेज नहर से पूर्व सुरक्षा हेतु उठाया गया। इस पर संचार स्टेशन, ईंधन स्टेशन तथा नौसैनिक मंच तथा पारगमन चौकियां जो हिंद महासागर में स्थापित होने वाली वायुयान एवं नौसैनिक टास्क फोर्सों द्वारा प्रयोग की जाएगी स्थापित करने की योजना थी जिससे ये संकट वाले स्थानों पर जाकर अपने अड्डों पर वापस आ सकें। डिगो गार्सिया प्रवाल भित्ति से सुरक्षित 140 फीट गहरी झील की सुविधा से युक्त जिसमें एक संपूर्ण नौसेना शरण पा सकती है तथा विशाल हवाई अड्डों के उपयुक्त द्वीप हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन तथा इससे संबंधित देशों के लिए यह मार्ग पत्तन था जो ईंधन हेतु प्रयुक्त होता था। सेशल्स द्वीप समूह। ब्रिटेन के स्वेज से पूर्व की ओर स्थित अपने अड्डे समाप्त करने से पहले नवंबर 1964 में यह निश्चित किया जा चुका था कि हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में संयुक्त राज्य की सहायता से ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की स्थापना की जाए। इस नए उपनिवेश में सेशल्स समूह से अलग किए गए द्वीप अल्डाब्रा, फारकर तथा डीरोसेज तथा मॉरिशस के अधीन का राज्य चागोस द्वीप श्रृंखला सम्मिलित था। इन द्वीपों की एक विशेषता यह थी कि ये लगभग जनसंख्या विहीन थे, अतः इससे संबंधित कोई राजनैतिक संकट उपस्थित होने की आशंका नहीं थी। इन्हें आंख तथा कान की तरह शत्रु के हवाई तथा नौसैनिक क्रियाकलापों पर सूचनाएं एकत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाना था। इन द्वीपों का विकास अमेरिकी संचार स्टेशन तथा ब्रिटिश ईंधन स्टेशन या नौसैनिक मंच चौकी के रूप में होता था। इस योजना के अंतर्गत संयुक्त राज्य की सहायता से ब्रिटेन पारगमन चौकी स्थापित करना चाहता था जो ब्रिटेन के स्वेज से पूर्व के अड्डों को समाप्त करने के बाद आपत्तिकालीन अड्डे हो जाते। दिसंबर 1966 में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को माहे द्वीप पर एक कक्षीय नियंत्रण तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के विविध आकाशीय योजनाओं के लिए आंकड़े एकत्रित करने के लिए मौसम विज्ञान तथा भूकंप विज्ञान से संबंधित सुविधाओं हेतु एक ट्रैकिंग तथा टेलीमेट्री सुविधाएं विकसित करने के लिए अनुमति प्रदान की है, जो 1988 तक उपलब्ध होगी। इसका किराया अमेरिकी सरकार $8.9 मिलियन प्रति वर्ष देती है। 1984 से अमेरिकी नौसेना विक्टोरिया बंदरगाह का भी प्रयोग कर रही है। माहे का यह ट्रैकिंग स्टेशन स्टार वार परियोजना में महत्वपूर्ण कारक है। कोमोरो द्वीप समूह, ये द्वीप समूह आर्थिक तथा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्रों से आने जाने वाले प्रमुखतया सुपर टैंकरों द्वारा प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्ग पर 200 मील में विस्तृत हैं। जून 1975 में स्वेज नहर के खुलने के बाद भी यूरोप की लगभग 70% खनिज तेल की आपूर्ति इसी भाग से होती है। कोमोरो द्वीप समूह के चार द्वीपों ग्रैंड कोमोरो, अंजुआन, मोहेली तथा मेयोट में से प्रथम तीन 6 जुलाई 1975 को स्वतंत्र घोषित कर दिए गए, परंतु मेयोट निवासियों ने स्वतंत्रता के पक्ष में वोट नहीं दिया। उनका कहना था कि वे फ्रांसीसी हैं तथा ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जबकि अन्य तीन द्वीपों के अधिकतर निवासी फ्रांसीसी नहीं हैं तथा मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं। मोजाम्बिक जलमार्गों में स्थित मेयोट द्वीप का सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। जाओजी में एक हवाई अड्डा तथा मौसम विज्ञान शाला स्थित है। यहाँ फ्रांस ने कुछ मिलिट्री सुविधाएं विकसित कर लिया है तथा 1975 में मालागासी के उत्तरी छोर के डीगो सुआरेस पर स्थित नौसैनिक अड्डे को समाप्त करने के बाद से मेयोट में एक नौसैनिक अड्डा स्थापित करने का निर्णय लिया है। मालागासी 1960 में स्वतंत्र होने से पहले फ्रांसीसी उपनिवेश रह चुका है। उत्तर स्थित डीगो सुआरेज में फ्रांसीसियों का नौसैनिक अड्डा, इवातो में वायुसैनिक अड्डा तथा फ्रांसीसी शक्ति का मुख्यालय राजधानी ताना नारीव में स्थित है, 1960 में ही हुई। एक सुरक्षा संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को मालागासी में नौसैनिक अड्डा तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार था। 4 जून 1973 को फ्रांस तथा मालागासी में परस्पर सहयोग हेतु हुई संधि के अनुसार फ्रांस ने 1 सितंबर 1973 को वायु सैनिक अड्डा बंद कर दिया तथा अपना सैन्य मुख्यालय रियूनियन द्वीप में स्थानांतरित कर लिया। मालागासियों ने 5 जून 1975 को डीगो सुआरेज नौसैनिक अड्डे पर अधिकार कर लिया, जिससे मालागासी में 90 वर्ष की फ्रांसीसी सैनिक उपस्थिति का अंत हो गया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण डीगो सुआरेज नौसैनिक अड्डे की समाप्ति से फ्रांस को बहुत बड़ी हानि हुई तथा हिंद महासागर में, विशेषकर पश्चिमी प्रदेश में, इसकी भूमिका को बड़ा आघात पहुंचा। यह घटना उस समय की है जब पेरिस पर भूतपूर्व अफार तथा इसास इस समय के जिब्रूती को स्वतंत्र करने की मांग को लेकर बड़ा दबाव पड़ रहा था। ताना नारीब के समीप स्थित संयुक्त राज्य का ट्रैकिंग स्टेशन भी जुलाई 1975 में बंद कर दिया गया। रियूनियन द्वीप, इस द्वीप पर फ्रांस का एक हवाई अड्डा तथा आकाशवाड़ी स्थित है। कुछ नौसैनिक सुविधाएं विकसित हैं करने का विचार भी किया गया है। सितंबर 1973 में मालागासी से अपने सैनिकों की वापसी के बाद फ्रांसीसी सरकार ने इस द्वीप पर अपनी सेनाएं स्थापित करने का विचार किया। यहाँ लगभग 3,000 फ्रांसीसी सैनिक रहते हैं। फ्रांसीसी सरकार ने 17 अप्रैल 1974 में हुई फ्रैंको अमेरिकन संधि के अंतर्गत संयुक्त राज्य द्वारा सागरीय परिवहन में संचार संबंधी सहायता हेतु एक ओमेगा रेडियो नेविगेशन एंड स्टेशन स्थापित किया है, जो विश्व में 8 अत्यंत निम्न आवृत्ति वेरी लो फ्रिक्वेंसी वाले स्टेशनों में एक है। द्वीप के निवासियों में फ्रांसीसियों के विरुद्ध भावनाएं जागृत हो रही हैं। मालागासी में फ्रांसीसी अड्डे की समाप्ति के बाद फ्रांसीसी सैनिकों के इस द्वीप पर प्रवास से रियूनियन के नेताओं ने बड़ी अप्रसन्नता प्रकट की है। मालागासी, मॉरिशस, सेशल्स तथा कोमोरो में उपनिवेशों की समाप्ति को देखकर यहाँ के निवासियों में भी स्वतंत्रता की इच्छा जागृत हो रही है। बहरीन द्वीप। बहरीन द्वीप फारस की खाड़ी में मध्यवर्ती पश्चिमी प्रदेश में कातार प्रायद्वीप तथा सऊदी अरब मुख्य भूमि के मध्य स्थित है। बहरीन द्वीप जो सबसे बड़ा है 30 मील लंबा, अधिकतम चौड़ाई 10 मील की है। उत्तर पूर्व स्थित मुहर्रक द्वीप से जो 4 मील लंबा तथा अधिकतम चौड़ाई 1 मील है, 1.5 मील लंबी सड़क से जुड़ा है। अन्य छोटे द्वीप सीतरा, उम, अन्नसान, जिद्दाह, हरवर समूह तथा कुछ जनसंख्या विहीन छोटे द्वीप हैं। इनका संपूर्ण क्षेत्रफल 255 वर्ग मील है तथा 1978 की अनुमानित जनसंख्या 2,75,549 है। इनमें 70% से अधिक मुस्लिम अरब हैं। यहाँ का प्रमुख हवाई अड्डा मुहर्रक तथा प्रमुख पत्तन मनामा और मीना सुलमान है। ओमान एवं मसीराह द्वीप। 40 मील लंबा तथा 10 मील चौड़ा मसीराह द्वीप ओमान भूक्षेत्र में आता है। यह ओमान के दक्षिणी तट से 15 मील तथा हार्मुज जलडमरू मध्य से 450 मील दक्षिण पूर्व स्थित सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सर्वप्रथम यह द्वीप ब्रिटेन की वायुसेना की मंचीय चौकी था। 1958 में हुए एक समझौते के अनुसार यह ब्रिटेन की वायुसेना को अड्डे के रूप में 99 वर्ष के पट्टे पर उपलब्ध था। इसका 2,460 मीटर लंबा रनवे आज के सबसे बड़े बमवर्षक हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए सक्षम है। यहाँ का हवाई अड्डा सुदूर पूर्व जाने वाले जहाज़ों को ईंधन प्रदान करता था तथा धोफार प्रांत के विद्रोहियों को दबाने के लिए ब्रिटिश संचालित ओमानी सेनाओं की सहायता करने वाले RAF के वाहक वायुयानों तथा लड़ाकू जेटों के लिए मंचीय चौकी का कार्य करता था। यह डिगो गार्सिया से हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र की निरीक्षक उड़ान भरने वाले जहाज़ों को ईंधन तथा विश्राम हेतु पारगमन चौकी के रूप में भी प्रयुक्त होता था। 1968 में अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए सुरक्षा श्वेत पत्र में कहा गया कि स्वेज से पूर्व ब्रिटिश सेनाओं को हटाने के बाद भी गन तथा मसीराह ब्रिटेन से संबंधित रहेंगे। मार्च 1976 में वहां से अपनी सेनाएं हटाने के बाद भी ब्रिटेन इसे ऑस्ट्रेलिया तथा सुदूर पूर्व से यातायात संबंध रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझता है। मार्च 1974 में ब्रिटिश सरकार ने ओमान को आश्वासन दिया कि यह अपने मिलिट्री समझौते का सम्मान करता है तथा मसीराह हवाई अड्डे पर अपना अधिकार समझता रहेगा। ऑस्ट्रेलिया। अमेरिकी नौसेना की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंद महासागर में स्थित अपने अड्डों तथा संचार के जाल को प्रशांत स्थित सुविधाओं से संबंधित करना चाहता है। इसने ऑस्ट्रेलिया में बैलून प्रक्षेपित करने के स्टेशन से लेकर स्पेस ट्रैकिंग स्टेशन तक 33 संस्थापनाएं स्थापित किया है। इसने 4 बृहद संस्थापनाएं वुमेरा में वायु अड्डा, जिसका उपयोग मिसाइल आक्रमण की पूर्व चेतावनी हेतु किया जाता है, नारोजीन में भूकंप मापी स्टेशन, पाइन गैप में भू स्टेशन, एलिस स्प्रिंग में आणविक विस्फोट परीक्षण स्टेशन तथा नॉर्थ वेस्ट केप में नौसैनिक संचार अड्डा स्थापित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राज्य तथा इसके मित्रों को पर्थ के समीप स्थित काकबर्न साउंड नौसैनिक अड्डे को प्रयोग हेतु अनुमति प्रदान कर दिया है। सिंगापुर स्थित एक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वहां स्थित तेंगाई हवाई अड्डे पर उतरने की सुविधा प्रदान की है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के एकांत स्थित मरुस्थल में वुमेरा स्थान पर संयुक्त राज्य ने 1970 में स्पेस संचार स्टेशन स्थापित किया है। यह शत्रु देशों के मिसाइल तथा मिसाइल प्रक्षेपणों को तुरंत ज्ञात करके ऑस्ट्रेलिया के रिसीविंग स्टेशनों को सूचनाएं भेज देता है, जहां से कुछ ही सेकेंड में यह सूचना अमेरिका पहुंच जाती है। यह स्टेशन संयुक्त राज्य के उपग्रहों को रूस, चीन तथा अन्य देशों पर जासूसी करके तथा मिसाइल आक्रमण की शीघ्र सूचना देने के लिए क्रियाशील बनाता है तथा नियंत्रित करता है। मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में पाइप गैस नामक स्थान पर कई मिलियन डॉलर की लागत से 990 एकड़ के क्षेत्र में संयुक्त राज्य ने ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से एक स्पेस संचार अड्डा स्थापित किया है। उपग्रहों को नियंत्रित करने वाला यह अड्डा संपूर्ण एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक उन्नत कोटि के यंत्रों से सुसज्जित है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यह सुरक्षा संबंधी अनुसंधान सुविधाओं हेतु विकसित किया गया है। 19 सितंबर 1980 में संयुक्त राज्य की ऑस्ट्रेलिया से हुई एक संधि के अनुसार इसके वायु सैनिकों के अड्डों को मंचीय चौकी के रूप में हिंद महासागर में निरीक्षण अथवा दूरवेधी बमवर्षकों के प्रयोग हेतु अनुमति दे दी है। इसने उत्तरी तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी सुविधाएं प्राप्त कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैलकम फ्रेजर ने संयुक्त राज्य के डीगो गार्सिया अड्डे का समर्थन किया है, जिससे यह सोवियत संघ से अपनी खनिज तेल की आपूर्ति से संभावित खतरे से सुरक्षा कर सके। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट के काकबर्न साउंड स्थित नौसैनिक सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे हिंद महासागर में मिलिट्री संतुलन स्थापित रह सके। ऑस्ट्रेलिया शासित द्वीप क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आने वाले अधिकतर द्वीप उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट के समीप स्थित हैं। 1940 से 1960 के मध्य ब्रिटेन ने इन द्वीपों तथा बाह्य चौकियों को ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया था। हिंद महासागर की राजनीति में एसमोर तथा कार्टियर, हर्ड तथा मैकडोनाल्ड, क्रिसमस तथा काकस द्वीप महत्वपूर्ण हैं। इनमें काकस द्वीप का विशेष महत्व है, क्योंकि डीगो गार्सिया अड्डे के निर्माण में तथा सातवें बेड़े के टास्क फोर्स के स्थापित करने में इसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। काकस द्वीप। काकस द्वीप के तीन प्रमुख द्वीप वेस्ट, होम तथा डायरेक्शन में वेस्ट द्वीप पर एक अच्छा रनवे वाला हवाई अड्डा है, जो एशिया, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य उड़ने वाले विमानों को ईंधन आपूर्ति भी करता है। साउथ द्वीप पर सिविल एविएशन विभाग का समुद्री अड्डा तथा ईंधन संयंत्र है। डायरेक्शन द्वीप पर केबल तथा वायरलेस स्टेशन तथा मौसम विज्ञान शाला है। अमेरिकी वायुसेना को इन द्वीपों पर स्टेजिंग की सुविधाएं प्राप्त हैं। काकबर्न साउंड में अमेरिकी टास्क फोर्स द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला पोताश्रय विकसित किया जा रहा है। मार्च 1971 में संयुक्त राज्य की वायुसेना ने डीगो गार्सिया के निर्माण कार्य हेतु थाईलैंड से निर्माण सामग्री लाने में इसका प्रयोग प्रारंभ किया, जो अब अन्य कार्यों हेतु भी प्रयुक्त हो रहा है। जुलाई 1976 में थाईलैंड स्थित संयुक्त राज्य का वायुसैनिक अड्डा समाप्त होने के बाद इंडोनेशियाई द्वीप श्रृंखला तथा बंगाल की खाड़ी तक निरीक्षण कार्य हेतु यह द्वीप और अधिक प्रयुक्त होने लगा। दक्षिणी हिंद महासागर के द्वीप। एम्स्टर्डम, क्रोजेट तथा सेंट पॉल द्वीपों पर मौसम विज्ञान शालाएं स्थापित की गई हैं। दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका के मध्य स्थित एम्स्टर्डम द्वीप एक अत्यंत महत्वपूर्ण भावी मंची अथवा पारगमन चौकी हो सकता है। खाड़ी क्षेत्र में शस्त्र व्यापार। हिंद महासागर में यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा जापान जैसे विकसित देशों की विशेष रुचि का कारण सामरिक महत्व के खनिजों की उपलब्धि केवल एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि इस प्रदेश के बहुत से देशों का अर्थतंत्र इन खनिजों के निर्यात से प्राप्त मुद्रा पर निर्भर करता है। इस प्रकार विकसित देशों तथा हिंद महासागरीय देशों के मध्य परस्पर लाभ का विशेष भाव भी वर्तमान है, जिसमें विकसित देशों की स्थिति अपेक्षाकृत सुदृढ़ है। इस प्रकार के संबंध के कई कारण हैं। हिंद महासागर के बहुत से राज्य बड़े लंबे समय तक विकसित देशों के भूतपूर्व उपनिवेश रह चुके हैं। इस गहन संबंध के कारण ये अपने सुरक्षा तथा विकास के बारे में स्वतंत्रतापूर्वक कोई कदम उठाने में एक बार झिझकते हैं। दूसरा कारण यह है कि स्वतंत्रता के उपरांत ये देश अपने आधुनिकीकरण हेतु परिश्रम से विकसित विज्ञान तथा तकनीकी पर आश्रित हैं। इस संबंध का तीसरा कारण इस प्रदेश में हाइड्रोकार्बन संसाधन की उपलब्धि है, जो विश्व के खनिज तेल की संपूर्ण संचित राशि का 40% अनुमानित की गई है। इस सदी के प्रारंभ में इसकी आर्थिक संभावना का अनुमान लगाकर फ्रांसीसी, ब्रिटिश तथा अमेरिकन खनिज तेल की कंपनियों ने इस प्रदेश में अन्वेषण का अधिकतर कार्य संपन्न कर डाला है। अर्थशास्त्रियों ने तो युद्ध के बाद के यूरोप तथा जापान के पुनरुत्थान हेतु इस प्रदेश से पेट्रोलियम की सुगम तथा सस्ती उपलब्धि को उत्तरदायी ठहराया है। यह स्थिति 1960 तक वर्तमान रही। हिंद महासागर के परिमंडलीय राष्ट्रों में शस्त्रापूर्ति। हिंद महासागर के परिमंडलीय राष्ट्र पिछले 10 से 12 वर्षों से शस्त्रों की खरीद में अभूतपूर्व होड़ प्रदर्शित कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर इन देशों में से किसी के भी पास स्वयं का महत्वपूर्ण शस्त्र उद्योग नहीं है। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में उन देशों द्वारा अत्यधिक शस्त्र भेजे जा रहे हैं जो यहाँ अपने हस्तक्षेप में वृद्धि चाहते हैं। वास्तव में तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज की विश्व राजनीति में शस्त्रों की बिक्री द्वारा प्रभाव तथा मुद्रा दोनों ही खरीदी जा रही है। हिंद महासागर के तटवर्ती राष्ट्र विश्व उपनति के अनुरूप अपने सुरक्षा बजट से निरंतर वृद्धि करते रहे हैं। 1970 के दशक में प्रतिवर्ष सुरक्षा बजट में केवल कुछ अपवादों को छोड़कर निरंतर वृद्धि ही होती रही है। पश्चिमी एशिया में यह वृद्धि अत्यंत तीव्र तथा अफ्रीका में सतत रही है। प्रदेश के सुरक्षा बजट में 75% से अधिक भाग लेने वाले देशों में सऊदी अरब, ईरान, इजराइल, इराक, दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, मिस्र तथा ऑस्ट्रेलिया हैं। इंडोनेशिया का 1971 से 1977 में सुरक्षा पर खर्च दुगना हो गया था तथा ओमान में 7 गुना। इनमें सऊदी अरब तथा ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर लगभग सभी देश कम से कम एक युद्ध तो अवश्य ही लड़ चुके हैं। संभवतः उनके सुरक्षा खर्च में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है। हिंद महासागरीय प्रदेश में शस्त्रों की अधिकाधिक आपूर्ति में निम्न तथ्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। प्रथम, 1950 में शस्त्र उत्पादक देशों द्वारा प्रदत्त मिलिट्री सहायता से विकासमान देश आधुनिक शस्त्रों से परिचित हो गए हैं, जिससे इसकी मांग में वृद्धि हो गई है। उदाहरणार्थ 1950 से 77 तक संयुक्त राज्य ने अकेले ही हिंद महासागर के तटवर्ती तथा आंतरिक राज्यों को $3 बिलियन मूल्य से अधिक के शस्त्र बेचे। द्वितीय, यह सहायता उन देशों को अधिक दी गई जो तकनीकी दृष्टिकोण से विकसित नहीं थे। हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों में संयुक्त राज्य से सर्वाधिक सहायता पाने वाले देश थाईलैंड, ईरान, पाकिस्तान, जॉर्डन तथा इराक थे। 1965 में इसने भारत तथा पाकिस्तान दोनों को मिलिट्री सहायता देना बंद कर दिया था। 1965 के बाद पाकिस्तान चीन से तथा भारत सोवियत संघ से शस्त्र लेने लगा। तीसरे, 1973 में खनिज तेल के मूल्य में चौगुनी वृद्धि तथा तब से सतत वृद्धि होती रही है, जिससे हुई अतिरिक्त आय द्वारा OECD देशों का उधार चुकता हो गया। वियतनाम में सीधे मिलिट्री हस्तक्षेप के दुष्परिणामों तथा खनिज तेल के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखकर इस प्रदेश में अपने लाभ की सुरक्षा हेतु पश्चिमी देशों ने दो विशाल खनिज तेल संसाधन संपन्न प्रादेशिक प्रभावी देश सऊदी अरब तथा ईरान को चुना। इन दोनों ही देश के शासक वर्ग बाह्य आक्रमणों से अपनी सत्ता की सुरक्षा हेतु पश्चिमी शस्त्र तथा यंत्र खरीदने के लिए तैयार हो गए। पश्चिमी तेल कंपनियों द्वारा इस प्रदेश में खनिज तेल के संचित संसाधनों की खोज के कारण उनके प्रभाव के अतिरिक्त 1950 में मिस्र की क्रांति तथा 1960 के प्रारंभ में इराकी क्रांति के बाद दोनों ही देशों के समाजवादी देशों से जुड़ जाने के कारण यहाँ के शासक इन्हें अपनी सत्ता के लिए भी धमकी स्वरूप समझने लगे थे। इस परिस्थिति से अपनी रक्षा हेतु इन्हें पश्चिमी देश, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका ही दृष्टिगोचर हुआ। साथ ही शस्त्रों की आपूर्ति के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य स्थापनों तथा इन देशों के शासक वर्गों में बड़ा घनिष्ठ संबंध विकसित हो गया। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंद महासागरीय प्रदेश में शस्त्रापूर्ति का अध्ययन किया गया है। इस क्षेत्र के सुरक्षा खर्च में शस्त्रों के मूल्य का प्रतिशत 1971 में 7 से 1977 में 14 तक हो गया। ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय तथा आंतरिक राज्यों में शस्त्रों की आपूर्ति बहुत बहुत कम हुई है, क्योंकि इन तीनों ही प्रदेशों में 1977 तक कोई युद्ध नहीं हुआ। अन्य तीन प्रदेशों में परिस्थिति भिन्न थी। दक्षिण अफ्रीकी श्वेत साम्राज्य के विरुद्ध आंदोलन तथा इथोपिया सोमालिया युद्ध के कारण इस प्रदेश में शस्त्रापूर्ति, तदनुसार सुरक्षा बजट में वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। दक्षिण अफ्रीका से शस्त्रों के आयात में 1971 में 30 मिलियन डॉलर से 1972 में 130 मिलियन डॉलर की तीव्र वृद्धि हुई, जो बाद के वर्षों तक वर्तमान रही। इसी प्रकार इथोपिया का सुरक्षा बजट, जो 1974 तक सोमालिया का दुगुना था, 1975 में 5 गुना हो गया, जो बाद के वर्षों तक चलता रहा। हिंद महासागरीय प्रदेश के पश्चिम एशिया के देशों में 1971 से 77 के मध्य हुए चार बड़े संघर्षों के उपरांत शस्त्रों के क्रय में होड़ स्थापित हो गई। 1971 में शस्त्र क्रय में इसने 1 बिलियन डॉलर से 1977 में 6 बिलियन डॉलर की वृद्धि की, जिनमें 1976 से 1977 में बड़ी तीव्र वृद्धि हुई थी। ईरान ने सबसे अधिक तथा सबसे उन्नत कोटि के शस्त्रों को खरीदा। इसके बाद संपूर्ण के 15 से 20% शस्त्र खरीदने वाले इराक तथा इसराइल हैं। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में शस्त्रों का सर्वाधिक क्रय भारत तथा पाकिस्तान ने किया। स्पष्टतया 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद दोनों ही देश शस्त्रों के क्रय में संलग्न हैं। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शस्त्रों की आपूर्ति इंडोचीन प्रदेश में केंद्रित रही, क्योंकि ये देश संयुक्त राज्य अमेरिका के मित्र रहे हैं। हिंद महासागरीय प्रदेश में दूसरा महत्वपूर्ण शस्त्रापूर्तिकर्ता सोवियत संघ है, जो संपूर्ण आपूर्ति का 25% शस्त्र आपूर्ति करता है। सोवियत संघ के संदर्भ में भी पश्चिम एशिया प्रमुख ग्राहक है। संभवतः सीमा से समीपता, राजनीतिक तथा सामरिक प्रभाव में वृद्धि तथा पेट्रोडॉलर की उपलब्धि ने सोवियत संघ को इस क्षेत्र में शस्त्रापूर्ति हेतु प्रोत्साहित किया। यह इराकी खनिज तेल का प्रमुख आयातक था तथा ईरान में संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव तथा हिंद महासागर में इनकी नौसैनिक उपस्थिति ने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन हेतु सोवियत संघ को आगे आने पर विवश किया। 1973 से 77 के मध्य हिंद महासागरीय क्षेत्र में सोवियत संघ के कुल 4.4 बिलियन के शस्त्रों की आपूर्ति में 3.8 बिलियन डॉलर के शस्त्र केवल इराक व मिस्र को गए, जिनसे इसका 20 वर्ष के लिए शांत तथा मिश्रता की संधि हुई थी। इस परिस्थिति में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा परिवर्तन आया प्रतीत होता है, क्योंकि मिस्र स्वयं को सोवियत संघ से अलग करना चाहता है तथा इराक अपनी आपूर्ति हेतु जानबूझकर अन्य देशों पर भी आश्रित हो रहा है। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में सोवियत संघ द्वारा आपूर्ति किए गए कुल 1.16 बिलियन डॉलर मूल्य के शस्त्रों में सबसे बड़ा क्रयकर्ता 1.1 बिलियन डॉलर भारत था। यहाँ भी इसकी भारत के साथ शांति तथा मित्रता हेतु 20 वर्षों के लिए संधि हुई है। अफ्रीका में सोवियत शस्त्रों की सर्वाधिक उपलब्धि इथोपिया को है। हिंद महासागरीय राज्यों में मिलिट्री व्यय वर्तमान 1980 के प्रारंभ से प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति से ऊपर औसतन 3% की दर से मिलिट्री व्यय में वृद्धि हो रही है। 1975 के बाद औसत वार्षिक वृद्धि दर 2% थी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अंतर्गत कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, फेडरल रिपब्लिक जर्मनी, ग्रीस, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, तुर्की तथा ब्रिटेन आते हैं। वारसा संधि संगठन WTO वीटो देशों के अंतर्गत बल्गेरिया, जेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया तथा सोवियत संघ आते हैं। मध्य पूर्व, दक्षिणी एशिया तथा ओशनिया के देशों में 1975 से 80 की अपेक्षा 1980-85 के मध्य मिलिट्री व्यय की दर अपेक्षाकृत अधिक ऊंची रही। विभिन्न देशों को आर्थिक समूहों में विभाजित करने पर भी यही रूप दिखाई पड़ता है। औद्योगिक बाजार अर्थव्यवस्था का मिलिट्री व्यय 1975 से 80 की अपेक्षा 1980-85 के मध्य अपेक्षाकृत अधिक तीव्र से बढ़ा। मिलिट्री व्यय उपनति का सर्वाधिक दुखद तथ्य यह है कि इसमें सर्वाधिक वास्तविक व्यय उन देशों में हुआ जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 440 से कम है। इस समूह के देशों का वास्तविक मिलिट्री व्यय 1976 के बाद से 4% की वार्षिक गति से बढ़ा है, अर्थात विश्व के संसाधनों का अधिकतर भाग प्रतिवर्ष मिलिट्री व्यय में लगा है। हिंद महासागरीय राज्यों के कुछ विशेष देशों में गठबंधन एवं प्रादेशिक समूहों में मिलिट्री व्यय की उपनति तथा ऐसे व्यय से उत्पन्न आर्थिक बोझ का विश्लेषण निम्न पंक्तियों में किया जा रहा है। मध्य पूर्व के मिलिट्री व्यय में 1980 के दशक के पहले 3 वर्षों में भीषण वृद्धि के उपरांत वार्षिक औसत अनुमानतः 1984-1985 में 3.5% गिरा है। बहरीन एवं जॉर्डन तथा युद्धरत देश ईरान इराक को छोड़कर शेष देशों ने अपने मिलिट्री व्यय में कटौती की है। दक्षिण एशिया श्रीलंका में 1984 के बजट पर पुनर्विचार के तथा भारत के 1983 एवं 84 के बजटों के उपरांत मिलिट्री व्यय की वृद्धि में कमी आई है। 1985 के लिए 5% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। 1975 के बाद से विश्व के सबसे गरीब प्रदेशों में से एक इस प्रदेश में मिलिट्री व्यय 6% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा है। मिलिट्री व्यय में सर्वाधिक वृद्धि प्रदेश के दो बड़े एक दूसरे के विरोधी राष्ट्रों भारत एवं पाकिस्तान में हुआ है। इस समय मिलिट्री व्यय में सर्वाधिक वृद्धि 1983 में 0.7%, 1985 में 5%। श्रीलंका जो इस समय सिंहली बहुल तथा अल्पसंख्यक तमिलों के मध्य गंभीर जातीय दंगों का क्षेत्र बन गया है में हो रही है। यहां 1978 से मिलिट्री व्यय 10 गुना बढ़ा है। अफ्रीका 1985 वह दूसरा वर्ष है जिसमें अफ्रीका में मिलिट्री व्यय गिरा है। यह प्रदेश के आर्थिक कठिनाइयों महाद्वीप के विभिन्न भागों में अकाल के अतिरिक्त प्राथमिक उत्पादों के व्यापार में गिरावट तेल निर्यातक देशों के तेल व्यापार में कमी विदेशी ऋण अदायगी में कठिनाई के कारण सरकारी तथ्य में बृहद पुनर्समायोजन का सूचक है। इन कठिनाइयों से प्रदेश के कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता भी आई है। ऑस्ट्रेलिया ने 1985 में अपनी यथावत कठिनाइयों पर बाह ऋण एवं ऋण अदायगी ऋण पर उच्च ब्याज दर तीव्र मूल्य वृद्धि कम निर्यात ऑस्ट्रेलियन डॉलर का अवमूल्यन तथा निरंतर सरकारी घाटे के कारण सरकारी क्रय में कमी आई है। मई 1985 में सामाजिक सेवाओं तथा मिलिट्री व्यय में ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1.5 बिलियन यूएस डॉलर 1 बिलियन की कटौती की घोषणा की गई है। हिंद महासागर परिमंडलीय राष्ट्रों की वांछित रणनीति। लगभग 15 वर्ष पूर्व राष्ट्रसंघ जनरल असेंबली ने हिंद महासागर को स्थायी शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इससे गठबंधित देशों द्वारा अफगानिस्तान में सोवियत संघ की उपस्थिति के आधार पर इसे ठुकरा दिया गया। वस्तुतः हिंद महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका को मिस्र, मोरक्को, केनिया, सोमालिया तथा ओमान में अड्डों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां इसके नाभिकीय प्रक्षेपक, पनडुब्बियां, क्रूजर, विध्वंसक तथा थोड़ी संख्या में आपूर्ति जलयान विद्यमान हैं। सोवियत सेना के भी क्रूजर, युद्धपोत तथा अधिक संख्या में आपूर्ति जलयान भ्रमणशील रहते हैं। हिंद महासागर में इनका कोई महत्वपूर्ण अड्डा न होने से इन्हें सागर स्थित आपूर्ति जलयानों पर निर्भर रहना पड़ता है। वस्तुतः उत्तरी अरब सागर स्थित त्वरित तैनाती सेना तथा डिगो गार्सिया के अड्डे का विकास हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। 4 तथा 5 जुलाई 1986 को अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी राजनीति का विरोध करते हुए सभी देशों द्वारा उस पर कठोर आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद को समाप्त होना ही है, प्रश्न केवल समय का है। हिंद महासागर में बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा हिंद महासागर परिमंडल के राष्ट्रों की उन्नति तथा विकास में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए डीगो गार्सिया के सैनिक अड्डे को समाप्त कर चागोस द्वीप श्रृंखला मॉरिशस को दे दिया जाए तथा 1971 की राष्ट्रसंघ की हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा को तत्काल लागू किया जाए। निसंदेह बड़ी शक्तियां अपनी सैनिक शक्ति में इतनी अधिक समृद्ध हैं कि हिंद महासागरीय परिमंडल के विकासशील राष्ट्र विश्व मंच को इनके विरुद्ध करने के प्रयास के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। अतः हिंद महासागर स्थित संपूर्ण विदेशी अड्डों तथा सेनाओं को हटाने के लिए सतत संघर्ष जारी रखना हिंद महासागरीय राष्ट्रों का कर्तव्य है। इससे महाशक्तिशाली राष्ट्रों की जनता प्रभावित होकर प्रशासन को वांछित दिशा में कदम उठाने हेतु विवश कर सकती है। इसका कुछ प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका में परिलक्षित भी हो रहा है। वर्तमान परिस्थिति में हिंद महासागर परिमंडलीय राष्ट्रों के लिए अत्यावश्यक है कि ये विभिन्न अंतर प्रादेशिक विवादों एवं संघर्षों को परस्पर मिलाकर सुलझा लें, जिससे बाह्य शक्तियां किसी भी व्यवस्था का लाभ न उठा सकें, जैसे दक्षिणी पश्चिमी एशिया तथा मध्य पूर्व के पेट्रोलियम उत्पादक देश तथा उनके उपभोक्ता देश। पेट्रोलियम के मूल्य या आयात निर्यात संबंधी समस्याओं का हल भी परस्पर मिलकर ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार 1950 तथा 60 के दशक में आसाम में बड़ी संख्या में बाहरी व्यक्तियों की घुसपैठ तथा 1971 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के समय लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों के घुसपैठ की समस्या भारत तथा बांग्लादेश बिना किसी बाह्य शक्ति के हस्तक्षेप के सुलझा सकते हैं। सभी गुट निरपेक्ष एवं विकासशील राष्ट्रों के विचार से नाभिकीय हथियारों के युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्षपूर्व दृष्टिकोण के स्थान पर शांति एवं सहयोगपूर्ण सह अस्तित्व का दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत एक नवीन आर्थिक क्रम व्यवस्था, परस्पर उत्तर दक्षिण वार्तालाप, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना तथा नाभिकीय हथियारों की धमकी एवं प्रयोग को मानवता के विरुद्ध एक अपराध मानना आदि बातें सम्मिलित हैं। ये राष्ट्र इस विचार से सहमत नहीं है कि युद्ध अनिवार्य है, चाहे वह शीत युद्ध ही क्यों न हो, परंतु यह आम भावना है कि युद्ध न होने देना असहायता एवं आशाहीनता का द्योतक है तथा यह विश्वास है कि गुलामी उपनिवेशवाद तथा रंगभेदी राजनीति की समाप्ति एक भीषण तूफान के उपरांत ही संभव है। इस संदर्भ में वांछित यह है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष की राजनीति के स्थान पर खेलकूद की भांति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी सहयोगपूर्ण प्रतियोगिता होना चाहिए। मानवता के सम्मुख आज मार्ग चयन की एक गूढ़ समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी समझौतावादी आयाम की ओर बढ़े अथवा नाभिकीय हथियारों द्वारा युद्ध से स्वयं विनष्ट हो जाए। आशावादी दृष्टिकोण से भी यदि संपूर्ण विश्व सहयोग पूर्ण प्रतियोगिता की ओर उन्मुख होगा तो इसको अपेक्षित रूप से फलने फूलने में कई दशक लगने हैं और बीच का अंतराल विशेषकर विकासशील देशों के लिए खतरनाक तथा विप्लवकारी होने की संभावना है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस अंतराल को समुचित रूप से स्वस्थ विकास की ओर उन्मुख किया जाए तथा इसे विध्वंसकारी वातावरण से मुक्त रखा जाए, जिससे सभी स्तरों पर मानवता का कल्याण हो सके। हिंद महासागरीय परिमंडल के राष्ट्रों की इस दिशा में विशिष्ट उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका होगी। समाप्त।